चैप्टर 31 रचना की प्रक्रिया। रचना की पद्धति उन नियमों उपनियमों का विधान जिनके आधार पर रचनाकार रचना को पूर्णता प्रदान करता है। उदाहरण, साहित्य का एक बड़ा आवश्यक अंग दृश्य काव्य है, जिसके अनेक भेद हमारे यहाँ किए गए हैं। रचना का प्रक्रिया भी बड़ा प्रकांड कौशलपूर्ण और जटिल निरूपण है। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 234। रजोगुण प्रकृति या माया के तीन गुण माने जाते हैं, सत्व, रज और तम। इन्हें गुण इसलिए कहते हैं कि ये रज्जु की भांति पुरुष को बांधते हैं। जगत के प्रत्येक पदार्थ में ये तीनों गुण विद्यमान होते हैं। सत्वगुण लघु प्रकाशक तथा आनंद रूप होता है। रजोगुण स्वयं चंचल होता है और औरों को भी चंचल बनाता है। इसी के कारण इंद्रियां विषयों में प्रवृत्त होती हैं। तमोगुण सत्वगुण का विरोधी होता है, यह जड़ता और निष्क्रियता उत्पन्न करता है। उदाहरण, पहले प्रकृति रजोगुण की प्रवृत्ति से दो रूपों में विभक्त होती है, सत्व प्रधान और तमः प्रधान। सत्व प्रधान के भी दो रूप हो जाते हैं, शुद्ध सत्व जिसमें सत्व गुण पूर्ण हो और अशुद्ध सत्व जिसमें सत्व अंशतः हो। जैसे ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 150। रति भाव प्रीति अनुराग या प्रेम श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। स्त्री में पुरुष की और पुरुष में स्त्री की रति ही श्रृंगार रस में स्थायी मानी जाती है। रति को आचार्य शुक्ल ने सुखात्मक वर्ग के भावों के अंतर्गत रखा है और प्रत्यक्ष आलंबन के प्रति व्यक्त स्थायी रति में भी श्रृंगार रस की अनुभूति मानी जाती है। उदाहरण, रति भाव को लीजिए, गहरी प्रेमानुभूति की दशा में मनुष्य रस लोक में ही पहुंचा रहता है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 271। उदाहरण, रति भाव का वर्णन हिंदी के बहुत से कवियों ने किया। कुछ लोगों का तो कहना है कि इसके अतिरिक्त और हमने किया ही क्या, पर एक प्रबंध के भीतर शुद्ध भाव के स्वरूप का उत्कर्ष जो पार्थिव प्रतिबंधों से परे होकर आध्यात्मिक क्षेत्र में जाता दिखाई पड़े, जायसी का मुख्य लक्ष्य है। जायसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 55। रमणीयता मनोहरता मन को वस्तु में लीन कराने की शक्ति पंडित राज जगन्नाथ द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण। पंडित राज के अनुसार रमणीय अर्थ वह है जिसके ज्ञान से, जिसके बार बार अनुसंधान करने से अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो। रमणीयता च लोकोत्तरा आह्लाद जनक ज्ञान गोचरता, क्षण क्षण नवीन प्रतीत होने की योग्यता को भी रमणीयता कहा गया है। उदाहरण, कविता की इसी रमाने वाली शक्ति को देखकर जगन्नाथ पंडित ने रमणीयता का पल्ला पकड़ा और उसे काव्य का साध्य स्थिर किया तथा यूरोपीय समीक्षकों ने आनंद को काव्य का चरम लक्ष्य ठहराया। इसी प्रकार मार्ग को ही अंतिम गंतव्य स्थल मान लेने के कारण बड़ गड़बड़ झाला हुआ। चिंतामणि भाग 1 पृष्ठ संख्या 163। रस विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों से व्यक्त स्थायी भाव ही रस है। व्यक्ता स तदैर भावाद्यय स्थायी भावो रस स्मृता। काव्य प्रकाश काव्य में विभाव का विशेष महत्व है। मन में किसी भाव को उद्दीप्त करने और उद्दीप्त भाव को देर तक बनाए रखने में विभाव ही सहायक होते हैं। अनुभाव भावों के उद्दीप्त होने की सूचना देते हैं, संचारी उनका पोषण करते हैं और इस प्रकार उद्दीप्त भाव रस रूप में व्यक्त होता है। विभाव का रूप विधान कल्पना करती है, कल्पित रूप विधान में ही भावोद्दीपन की क्षमता होती है। आचार्य शुक्ल ने प्रत्यक्ष और स्मृत रूप विधान में भी रसात्मक अनुभूति की क्षमता मानी। उनके अनुसार रसात्मक अनुभूति के दो लक्षण होते हैं, प्रथम अनुभूति काल में अपने व्यक्तित्व के संबंध की भावना का परिहार और द्वितीय किसी भाव के आलंबन का सहृदय मात्र के साथ साधारणीकरण। ये दोनों ही लक्षण प्रत्यक्ष उपस्थित आलंबनों के प्रति जगने वाले भावों पर घटित होते हैं। रति उत्साह हास आदि भाव ये लक्षण बहुत दूर घटित होते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार रस की तीन कोटियां माने हो सकती हैं। उत्तम कोटि तो वह होती है जहां कवि आश्रय और पाठक तीनों का पूर्ण तादात्म्य हो। मध्यम कोटि वहां होती है जहां पाठक आश्रय के साथ तादात्म्य नहीं कर सकता। शास्त्रीय शब्दावली में इसे रसाभास कहते हैं। निकृष्ट कोटि वहां होती है जहां कोरा चमत्कार पाठकों की कौतूहल वृत्ति को तुष्ट करके उन्हें आनंदित कर देता है। आचार्य शुक्ल ने रस सिद्धांत को युग के अनुकूल कई दृष्टि से परिभाषित किया। छायावादी युग में अनुभूति की बड़ी चर्चा थी। उन्होंने हृदय की अनुभूति को ही रस घोषित किया और हृदय के प्रभावित होने की स्थिति को रसानुभूति माना। इस प्रकार उन्होंने शास्त्रों की मर्यादा को इतनी व्याप्ति देने की चेष्टा की कि वह प्रत्येक प्रकार के काव्य का मूल्यांकन में समर्थ हो सके। उदाहरण काव्य का आभ्यंतर स्वरूप या आत्मा भाव या रस है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 105। हृदय के प्रभावित होने का नाम ही रसानुभूति है। चिंतामणि भागदो पृष्ठ संख्या 88। मैं आलंबन मात्र के विशद वर्णन को श्रोता में रसानुभव भावानुभाव ही सहित उत्पन्न करने में पूर्ण समर्थ मानता हूँ। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 34। साधारणीकरण का सीधे शब्दों के अर्थ है श्रोता का भी उसी भाव में मग्न होना जिस भाव की कोई काव्यगत पात्र व्यंजना कर रहा था। यह तो रस की उत्तम दशा है, पर रस की एक मध्यम दशा भी होती है जिसमें पात्र द्वारा व्यंजित भाव में श्रोता का हृदय योग न देकर इस पात्र की ही किसी भाव का अनुभव करने लगता है। यह भी एक प्रकार की रसात्मक काव्यानुभूति है, पर मध्यम कोटि की। चमत्कारीवादियों के कौतूहल को भी काव्यानुभूति के अंतर्गत ले लेने पर रसानुभूति की क्रमशः उत्तम, मध्यम और निकृष्ट तीन दशाएं हो जाती हैं। चिंतामणि भाग दो पृष्ठ संख्या 220। रस दशा, रसमग्नता की दशा, हृदय की मुक्तावस्था, वह अवस्था जिसमें हृदय व्यक्तिगत राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। उदाहरण, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा है। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 5। रस की उत्तम दशा, काव्यगत पात्र या कवि द्वारा व्यंजित भाव से श्रोता या पाठक को पूर्णतः मग्न हो जाना रस की उत्तम दशा है। उदाहरण, साधारणीकरण का सीधे शब्दों में अर्थ है श्रोता का भी उसी भाव में मग्न होना जिस भाव की कोई काव्यगत पात्र या कवि व्यंजना कर रहा है, वह यह दशा तो रस की उत्तम दशा है। चिंतामणि भाग दो पृष्ठ संख्या 220। रसों की निष्कृष्ट दशा, चमत्कार और कौतूहल प्रधान रचना में भी पाठक या श्रोता को कुछ आनंद मिलता है, इस स्थिति को रस की निकृष्ट दशा कह सकते हैं। उदाहरण, चमत्कारवादियों के कौतूहल को भी काव्यानुभूति के अंतर्गत ले लेने पर रसानुभूति के क्रमशः उत्तम, मध्यम और निकृष्ट दशाएं हो जाती हैं। चिंतामणि भाग दो पृष्ठ संख्या 220। रस की मध्यम दशा, जहाँ पात्र द्वारा व्यंजित भाव से श्रोता या पाठक मग्न नहीं होता, वरन स्वयं उस पात्र के प्रति किसी भाव का अनुभव करने लगता है। उदाहरण पर रस की एक मध्यम दशा भी होती है जिसमें पात्र द्वारा व्यंजित भाव में श्रोता का हृदय योग न देकर उस पात्र के प्रति किसी भाव का अनुभव करने लगता है। चिंतामणि भाग दो पृष्ठ संख्या 220। रस निरूपण, लक्षण ग्रंथों में आचार्य द्वारा किया गया विभाव अनुभाव संचारी भाव से पुष्ट रस के स्वरूप का निरूपण। भरत मुनि ने लेकर भट्ट, कोल्लट, शंकुक, लुल्लट भट्ट, तौत भट्ट नायक, अभिनव गुप्त आदि अनेक आचार्यों ने रस के स्वरूप का गांभीर्य विवेचन किया। हिंदी में भी रस निरूपण की लंबी परंपरा रही है। आचार्यों द्वारा लक्षण ग्रंथों में किए गए रस निरूपण में सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि जीवन की गतिशील धारा के साथ बदलते हुए मानवीय संबंधों से रस तत्व का संबंध टूट गया। रस के अंगों का विवेचन एक बंधी हुई परंपरा में किया जाता रहा। आचार्यों की सारी शक्ति के रस के अंगों के लक्षण उदाहरण प्रस्तुत करने में लग गई और कालांतर में यह विवेचन रस्म अदायगी के तौर पर होने लगा। उदाहरण, रस निरूपण में भावों और रसों को गिनाने का यह प्रभाव बड़ा पड़ा कि जो बातें भावों और रसों के निर्दिष्ट शब्दों के भीतर आती हुई उन्हें प्रत्यक्ष रूप से न दिखाई पड़े, उनके वर्णन से उन्हें कोई प्रयोजन ही न रह गया। केवल गिनी गिनाई बातों को निर्दिष्ट शैली के अनुसार आंख मूंद कर कह दिया गया, बस पूर्ण रस की रस्म अदा हो गई। रसमीमांसा पृष्ठ संख्या 94-95। रस पद्धति, काव्य के आत्मा का विवेचन करने वाली पद्धतियों में एक काव्य का प्रतिमान निर्धारित करने वाली वह पद्धति जो काव्य में विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस निष्पत्ति का विवेचन करती है। उदाहरण, रसात्मक पद्धति एक ही प्रकार की नहीं होती, दो प्रकार की अनुभूति तो लक्षण ग्रंथों के रस पद्धति के भीतर ही सूक्ष्मता से विचार करने से मिलती है। चिंतामणि भाग दो पृष्ठ संख्या 79। यहाँ पर चमत्कार पद्धति और रस पद्धति में जो भेद है उसे स्पष्ट करने का थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए। किसी वस्तु के वर्णन या किसी तथ्य के कथन में बुद्धि को दौड़ाकर यदि ऐसी वस्तु की योजना की जाए जिसकी ओर प्रस्तुत वस्तु या प्रसंग के संबंध में श्रोता का ध्यान पहले कभी न गया हो और जो इस कारण बिल्कुल या नया विलक्षण लगे, तो एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न होगा। यही कौतूहल उत्पन्न करना चमत्कार का उद्देश्य है। रस संचार के निमित्त जो कथन किया जाता है उसमें कभी कभी साधारण से कुछ और ढंग पकड़ना पड़ता है। क्या ढंग पकड़ना पड़ता है इस पर और कभी विचार किया जाएगा, पर उसमें यह उद्देश्य मुख्य नहीं होता कि जिस वस्तु या प्रसंग की योजना की जाए वह श्रोता को नया विलक्षण और अनूठा लगे, बल्कि उसमें मर्मस्पर्शी स्वरूप के कारण भाव की गहरी व्यंजना करे या श्रोता के हृदय में वासना रूप में स्थित किसी भाव को जागृत करे। रस प्रवणता। रस के पूर्ण व्यंजना के पहले की स्थिति भाव प्रेरित होकर रसात्मक कविता की सृष्टि में प्रवृत्त होने लगती है। उदाहरण अतः कवि अपने स्वभावगत भावुकता की जिस उमंग में रचना करने में प्रवृत्त होता है और उसके विधान में परस्पर रहता है, उसे यदि हम कुछ कहना चाहें तो रस प्रवणता या रसोन्मुखता ही कहते हैं। चिंतामणि भाग 2 पृष्ठ संख्या 104।